एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक ऐसे प्राचीन समूह की जिनका नाम तो हम सबने सुना है, सेल्ट्स, है ना?
हाँ, बिल्कुल सुना है।
लेकिन क्या हम उन्हें वाकई समझते हैं?
हमारे हाथ लगे हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर बैरी कनलिफ की किताबों द सेल्ट्स और द सेल्ट्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के कुछ कमाल के सारांश, और ये दिखाते हैं कि सेल्स के बारे में हमारी जो आम समझ है शायद शायद वो पूरी तरह सही नहीं है।
बिल्कुल। अक्सर हम फिल्मों में, कहानियों में देखते हैं तो सेल्स मतलब बहादुर योद्धा, एक खास तरह की नस्ल, कुछ ऐसा ही दिखाते हैं ना?
हाँ, वही एकदम।
लेकिन कनलिफ का काम, जो उनकी रिसर्च है, वो इस पूरी तस्वीर पर ही एक तरह से सवाल उठाता है।
और ये सिर्फ कोई पुरानी इतिहास की बात नहीं है, नहीं नहीं, ये आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि पहचान मतलब आइडेंटिटी कैसे बनती है, कैसे हम सुनी सुनाई बातों या जो ऐतिहासिक मिथक बन जाते हैं उन पर सवाल उठा सकते हैं।
हाँ, और कैसे जानकारी को परखना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है।
एग्जैक्टली। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इस दिलचस्प पहेली की परतें खोलने की।
बिल्कुल। तो ये आवाज जो पुरानी धारणाओं को चुनौती दे रही है, ये है किसकी? ये है सर बैरी कनलिफ। ये कोई साधारण इतिहासकार नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूरोपीय पुरातत्व के एमेरिटस प्रोफेसर हैं।
हाँ, और 50 साल से ज्यादा का तजुर्बा है उन्हें यूरोप का प्रागैतिहास, खासकर लौह युग मतलब आयरन एज।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, इन्होंने डेनबरी हिलफोर्ड जैसी अहम जगहों पर खुद खुदाई की है, फील्ड वर्क किया है।
हाँ, और उनकी असली खासियत ये है, मतलब जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, कि वो सिर्फ एक ही चश्मे से नहीं देखते।
अच्छा।
वो पुरातत्व यानी खुदाई से मिले सबूत, फिर भाषा विज्ञान, भाषाओं का अध्ययन, पुराने दस्तावेज जो मिलते हैं, और मानव विज्ञान मतलब समाज और संस्कृति का अध्ययन, इन सबको मिलाकर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं।
होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं।
हाँ, कह सकते हैं। और वो अटलांटिक यूरोप यानी स्पेन से लेकर स्कॉटलैंड तक के जो समुद्री तट है ना, उनको बहुत अहमियत देते हैं, जबकि पहले ज्यादातर ध्यान कहाँ रहता था?
मध्य यूरोप पर।
सही।
उनका नजरिया हजारों सालों और पूरे महाद्वीप को समेटता है। वो आसान जवाबों से बचते हैं, उन्हें सबूतों के आधार पर जो जटिल लेकिन शायद ज्यादा सच्ची कहानियां निकलती हैं उनमें ज्यादा रुचि है।
तो फिर कनलिफ की किताबों का निचोड़ क्या है, सार क्या है, सबसे बड़ी बात वो क्या कह रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो सीधे उस विचार पर चोट करते हैं जिसे हम शायद सच मानते आए हैं, कि सेल्ट कोई एक नस्ल या कौम थी जो कहीं मध्य यूरोप से निकली और पूरे महाद्वीप पर छा गई।
अच्छा, जो हम सोचते थे वैसा नहीं। कनलिफ कहते हैं ये सोच ही बुनियादी तौर पर गलत है।
अरे,
बिल्कुल। वो कहते हैं कि सेल्ट शब्द तो असल में एक तरह का सुविधाजनक लेबल है,
लेबल मतलब?
मतलब एक नाम जो अलग अलग जमानों में अलग अलग लोगों ने अपने से अलग दिखने वाले समूहों के लिए इस्तेमाल किया। जिसे हम सेल्टिक संस्कृति कहते हैं वो दरअसल कई अलग अलग समुदायों का एक मिला जुला ताना बाना था।
अच्छा।
हाँ, उनमें कुछ समानताएं थीं, जैसे कुछ भाषाएं थीं जो मिलती जुलती थीं, आयरिश, वेल्श वगैरह, कला की एक खास शैली थी जिसे लाटेन कहते हैं, कुछ धार्मिक मान्यताएं थीं, समाज का ढांचा था, लेकिन
लेकिन
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब एक ही खून के थे, या उनका कोई एक देश था, या कोई एक राजनीतिक पहचान थी।
तो फिर ये कोई एक लहर नहीं थी जो यूरोप में फैली, मतलब एक ग्रुप आया और फैल गया, वैसा नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कनलिफ हमें लगभग 1200 ईसा पूर्व से रोमन काल तक के लंबे सफर पर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि ये सेल्टिक कहलाने वाली चीजें, ये विशेषताएं, ये धीरे धीरे फैली।
धीरे धीरे कैसे?
व्यापार के जरिए, शादियों से रिश्ते बने, एक दूसरे से सीखा, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा और स्थानीय संस्कृतियों में वो चीजें घुल मिल गईं, अडाप्ट हो गईं।
अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से।
हाँ, ये किसी बड़ी फौज की जीत या बड़े पैमाने पर पलायन से नहीं हुआ, और ये सिर्फ मध्य यूरोप की कहानी नहीं है, बल्कि अटलांटिक तटों से लेकर आज के तुर्की तक फैले एक विशाल इलाके की कहानी है।
चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत इसी सेल्ट लेबल से करते हैं। ये आया कहां से आखिर?
कर्लिफ बताते हैं कि ये शब्द सबसे पहले यूनानियों ने इस्तेमाल किया, केल्टोई, फिर रोमनों ने सेल्टे या गैली,
किसके लिए इस्तेमाल किया?
अपने उत्तर में रहने वाले उन लोगों के लिए जिन्हें वो बर्बर या असभ्य समझते थे।
ओहो, मतलब ये बाहर वालों ने नाम दिया था, उन्होंने खुद को ये नहीं कहा?
नहीं, ये एक बाहरी लेबल था जो उन पर चिपकाया गया था।
अच्छा, तो ये एक बाहरी पहचान थी। फिर ये सेल्टिक जाति या सेल्टिक रेस वाला विचार कैसे घुसा दिमाग में?
शाओं के एक परिवार को पहचाना जिसे सेल्टिक भाषा परिवार कहा गया।
हाँ हाँ।
तो उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मान लिया कि भाई अगर भाषा एक जैसी है तो बोलने वाले लोग भी एक ही नस्ल के होंगे।
अरे, ये तो गड़बड़ है।
बिल्कुल। और बस यहीं से सेल्टिक रेस का मिथक पैदा हो गया, और उस जमाने में राष्ट्रवाद के विचार भी पनप रहे थे, तो ये बात और फैल गई।
लेकिन कनलिफ कहती हैं कि सिर्फ भाषा के आधार पर नस्ल तय करना ठीक नहीं, यहीं पर पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी की भूमिका आती है ना।
बिल्कुल। कनलिफ जोर देती हैं कि रोमन लेखक जैसे जूलियस सीजर, जिनके लिखे को हम सेल्ट्स के बारे में सच मानते आए हैं, वो असल में पक्षपाती थे। उनका अपना एजेंडा था।
सीजर का एजेंडा क्या मतलब?
देखिए, सीजर गॉल आज का फ्रांस जीत रहा था, तो उसने वहां के लोगों को, गॉल्स जिन्हें रोमन सेल्ट्स कहते थे, को जानबूझकर पिछड़ा, झगड़ालू और बर्बर दिखाया।
क्यों? ऐसा क्यों किया?
आकी रोम में बैठे लोगों को लगे कि सीजर बहुत बहादुर है, महान काम कर रहा है और उसका युद्ध बिल्कुल जायज है। ये इतिहास कम, अपना प्रोपेगेंडा ज्यादा था।
अच्छा, तो अपनी बड़ाई के लिए।
हाँ।
तो फिर जमीन से निकले सबूत क्या कहते हैं? क्या वो सीजर की बात को सही ठहराते हैं जो खुदाई ने मिला है?
नहीं, ज्यादातर नहीं। हॉलस्टैट और लाटेन संस्कृतियों से मिली चीजें हैं, जैसे खूबसूरत कलाकृतियां, धातु के शानदार हथियार और गहने, बड़े बड़े किलेबंद शहर जैसे केंद्र, जिन्हें ओपिडा कहते हैं।
ओपिडा, ये क्या है?
ये किलेबंद बस्तियां थीं, शहर जैसे केंद्र थे। ये सब एक कहीं ज्यादा विकसित और संगठित समाज की तरफ इशारा करते हैं। उनके मिट्टी के बर्तन बनाने के तरीके, मृतकों को दफनाने की रस्में, ये सब दिखाते हैं कि उनका जीवन सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं था। तो ये सबूत रोमन कहानियों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं।
और यही कनलिफ का वो सबसे अहम विचार आता है कि ये संस्कृति फैली कैसे? अगर ये लोग एक जगह से निकलकर सब पर कब्जा नहीं कर रहे थे, तो फिर ये सेल्टिक चीजें जैसे वो लाटिन आर्ट वगैरह दूर दूर तक पहुंची कैसे?
हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कनलिफ का तर्क है कि ये सांस्कृतिक फैलाव था, न कि लोगों का सामूहिक पलायन। मतलब कल्चर फैला, लोग उतने नहीं।
सांस्कृतिक फैलाव।
सबूत दिखाते हैं कि कई जगहों पर लोगों ने सेल्टिक चीजें अपनाई, जैसे लाटिन आर्ट स्टाइल या भाषा के कुछ तत्व, लेकिन उनकी अपनी पुरानी स्थानीय संस्कृति भी साथ साथ चलती रही। उसमें मिलावट हुई, पूरी तरह बदली नहीं।
अच्छा, मतलब मिक्सिंग हुई।
हाँ, तो विचारों और तकनीकों का आदान प्रदान हुआ। अब ये कैसे हुआ? शायद व्यापार के रास्तों से, खासकर अटलांटिक समुद्री रास्तों से।
समुद्र के रास्ते से?
हाँ। कनलिफ इन पश्चिमी तटों को अटलांटिक फसाड कहते हैं। वो मानते हैं कि ये समुद्र एक हाईवे की तरह था जो स्पेन से लेकर ब्रिटेन आयलैंड तक लोगों और विचारों को जोड़ता था।
ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है,
है ना?
या शायद ये ऊंचे तबके के लोगों के जरिए फैला, मतलब एलीट क्लास ने अपनाया तो फैशन बन गया।
या फिर एक संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर, मतलब ऐसी भाषा जिसे अलग अलग बोली बोलने वाले लोग व्यापार या बातचीत के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उस पुरानी सोच को चुनौती देता है कि सब कुछ मध्य यूरोप से ही शुरू हुआ और वहीं से फैला।
ये तो वाकई सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो फिर ये समाज असल में था कैसा? अगर सिर्फ बर्बर नहीं तो क्या?
तस्वीर काफी मिली जुली और जटिल है, आसान जवाब नहीं है। हाँ, योद्धाओं का एक ऊंचा तबका जरूर था, इसमें कोई शक नहीं।
जैसे
फ्रांस में मिली विक्स चसी शाही कब्रें इसका सबूत है। वहां एक महिला को सोने के भारी गहनों और यूनान व इटली से लाई गई महंगी चीजों के साथ दफनाया गया था।
अरे वाह, मतलब व्यापार भी खूब होता था।
बिल्कुल, इससे उनके दूर दराज के व्यापारिक रिश्तों का पता चलता है।
लेकिन सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, समाज में और भी कुछ था?
हाँ बिल्कुल, उनके बड़े शहर जैसे केंद्र थे जिन्हें हमने ओपिडा कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नेटवर्क थे, धातु के काम में, खासकर लोहे और कांसे के काम में वो कमाल के माहिर थे। वो लाटिन शैली इसी का उदाहरण है। शायद उनकी अपनी कानून और शिक्षा की व्यवस्थाएं भी थीं, और ड्रुइड्स जिन्हें अक्सर हम सिर्फ जादू टोना करने वाले पुजारी समझ लेते हैं।
हाँ, वो इमेज है।
कनलिफ मानते हैं कि वो शायद एक पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, इंटेलेक्चुअल क्लास, जो इतिहास, कानून, खगोल विज्ञान जानते थे और समाज में अहम भूमिका निभाते थे। पुजारी भी थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थे।
अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग बात है। और महिलाओं का क्या स्थान था? रोमन समाज की तरह या कुछ अलग?
शायद रोमन समाज से कुछ बेहतर। पूरी तरह कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं।
जैसे?
जैसे बूदिका जैसी रानी, उन्होंने ब्रिटेन में रोमनों को कड़ी टक्कर दी थी, वो एक ताकतवर नेता थी। कुछ कब्रों से भी लगता है कि महिलाओं का दर्जा ऊंचा हो सकता था, जैसे वो विक्स वाली कब्र।
हाँ।
रोमन लेखक सिर काट कर रखने जैसी प्रथाओं का जिक्र करते हैं और इसके कुछ पुरातात्विक सबूत भी मिले हैं, लेकिन कनलिफ कहते हैं कि इसे सिर्फ बर्बरता कहकर खारिज मत करो।
तो
इसके पीछे के जटिल धार्मिक या सामाजिक मतलब को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर संस्कृति के अपने रीति रिवाज होते हैं।
सही बात है। और वो लैटिन कला शैली जिसके बारे में आपने बताया, वो इतनी खास क्यों है?
वो इसलिए खास है क्योंकि वो यूनानी या रोमन कला से बिल्कुल अलग है। उसमें इंसानों या जानवरों को हूबहू रियलिस्टिक बनाने के बजाय जटिल, घुमावदार, लहरदार पैटर्न और अमूर्त डिजाइन ज्यादा है, एकदम फ्लोई।
कहाँ दिखती है ये?
तलवारों की मूठों पर, ढालों पर, जैसे ब्रिटेन में मिली मशहूर बैटरसी शील्ड, गहनों पर, खासकर टॉर्क जो गले में पहनने वाले भारी कड़े होते थे, और बर्तनों पर जैसे डेनमार्क में मिला गुंडेस्ट्रूप काल्ड्रन। ये शैली दिखाती है कि उनकी अपनी एक अलग सोच और सौंदर्य बोध था, मेडिटेरेनियन दुनिया से अलग। लेकिन दिलचस्प बात यह है,
क्या
एलीट स्टाइल थी किसी एक नस्ल की पहचान नहीं।
अच्छा, मतलब स्टाइल अलग फैली, भाषा अलग,
हो सकता है, या दोनों का फैलाव एक जैसा न रहा हो।
और आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि सेल्टिक दुनिया कोई एक जैसी चीज नहीं थी, बहुत विविधता थी उसमें।
बिल्कुल, जरा सोचिए, एक तरफ स्पेन और पुर्तगाल के तटों पर रहने वाले समुद्री समुदाय, दूसरी तरफ फ्रांस के अंदरूनी हिस्सों में बड़े किलेबंद शहर ओपिडा, फिर वहां से निकलकर डेन्यूब नदी के किनारे बाल्कन और ग्रीस तक पहुंचने वाले समूह।
हाँ।
और तो और, आज के तुर्की में गलातिया नाम का राज्य बसाने वाले गॉल्स, इन सबको किसी न किसी दौर में सेल्टिक या उससे जुड़ा माना गया है।
बाप रे, इतना फैला हुआ है।
हाँ, तो जाहिर है कि उनमें भारी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता रही होगी। कनलिफ का काम हमें इसी बहुरंगी जटिल तस्वीर को देखने में मदद करता है।
तो अगर हम कनलिफ के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि सेल्टिक नस्ल जैसा कुछ नहीं था, ये बाद में गढ़ा गया मिथक है।
हाँ, ये सबसे अहम है। जिसे हम सेल्टिक कहते हैं वो सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव ज्यादा है, खून का रिश्ता कम या शायद बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अटलांटिक समुद्री रास्ते शायद जमीनी रास्तों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे विचारों और संस्कृतियों के लेन देन के लिए। इसने पश्चिमी यूरोप की जड़ों को एक नई रोशनी में दिखाया है।
बिल्कुल। तीसरी बात, संस्कृति अक्सर धीरे धीरे फैलती है, लोग एक दूसरे से सीखते हैं और चीजें अपनाते हैं, यह हमेशा हमले और कब्जे से नहीं होता, है ना?
सही कहा, विचार और तकनीकें लोगों की बड़ी बड़ी टोलियों से ज्यादा तेजी से सफर कर सकती हैं।
चौथी, पुराने जमाने के लेखकों, खासकर जो बाहर वाले थे जैसे रोमन, उनकी बातों को आंख बंद करके सच नहीं मान लेना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि लिखने वाले का मकसद क्या था।
बिल्कुल, उनका नजरिया समझना जरूरी है। पुरातत्व हमें एक अलग, शायद ज्यादा वस्तुनिष्ठ कहानी बता सकता है।
और पांचवी बात ये कि रोमन राज आने के बाद भी सेल्टिक संस्कृतियां खत्म नहीं हुई, बल्कि बदल गईं। उन्होंने नई चीजें सीखी, खुद को ढाला, ये उनकी ताकत और लचीलेपन को दिखाता है।
हाँ, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम भारत में देखते हैं, कितनी अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां हैं, सदियों से एक दूसरे पर असर डालती आई हैं। बहुत कुछ साझा है, फिर भी सबकी अपनी अलग पहचान है।
सही, भारतीय होना भी तो कोई एक सीधी साधी परिभाषा नहीं है, बहुत जटिल है।
एग्जैक्टली।
कनलिफ के कुछ विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे उनका ये कहना।
कौन सा?
कि सेल्ट शब्द एक सुविधाजनक लेबल है, किसी एक असली या विशुद्ध सेल्ट की तलाश करना व्यर्थ है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि पहचान कितनी बदलती रहती है, और ये जो लेबल हम चिपका देते हैं ये कितने भ्रामक हो सकते हैं।
या फिर ये कि पुरातत्व पारंपरिक प्रवासन मॉडल को चुनौती देता है और स्थानीय सांस्कृतिक विकास और निरंतरता का समर्थन करता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे नए सबूत हमें पुरानी कहानियों पर सवाल उठाने और अतीत को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें बताई जाती हैं।
और ये चेतावनी भी बहुत जरूरी लगी मुझे, सेल्ट्स को समझने के लिए हमें सीजर जैसे लेखकों के पक्षपाती नजरिए से परे जाकर देखना होगा कि पुरातात्विक साक्ष्य उनके समाजों के बारे में वास्तव में क्या बताते हैं।
हाँ, मतलब सिर्फ लिखी हुई बात पर मत जाओ, जमीन से निकले सबूतों को भी देखो, दोनों को मिलाकर तस्वीर बनाओ।
अंत में ये भी बहुत गहरा है, रोमन शासन के तहत सेल्टिक संस्कृति का जीवित रहना और बदलना सांस्कृतिक परंपराओं के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।
सही बात है, संस्कृतियां पत्थर की लकीर नहीं होती, वो बदलती हैं, ढलती हैं, नई चीजें अपनाती हैं और इस तरह जिंदा रहती हैं।
तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? आज की जिंदगी में ये कैसे काम आ सकता है?
मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक है कि हम अपने आसपास इस्तेमाल होने वाले लेबलों और बनी बनाई धारणाओं, मतलब स्टीरियोटाइप्स पर सवाल उठाएं। चाहे वो इतिहास के सेल्ट हों या आज किसी इलाके, धर्म या समुदाय से जुड़े लेबल हों, हमें पूछना चाहिए, ये लेबल किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके पीछे कौन सी सच्चाई या विविधता छुप रही है, क्या ये पूरी कहानी है?
बिल्कुल, ये मैं समझने में मदद करता है कि हमारी अपनी पहचान भी कितनी जटिल है, कितनी परतों से बनी है। ये कोई पत्थर की मूर्त नहीं जो हमेशा एक जैसी रहे, ये बनती है, बदलती है, विकसित होती है।
हाँ, और ये बात आज जब हम मल्टीकल्चरलिज्म या नेशनल आइडेंटिटी की बातें करते हैं तो बहुत मायने रखती है।
सही, और ये हमें सिखाता है कि कहानियाँ, नैरेटिव्स कैसे हमारी सोच बनाती हैं। चाहे वो रोमनों की कहानी हो या आज के ज़माने की कोई और कहानी, कोई मीडिया नैरेटिव हो, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कौन सी कहानी पर यकीन कर रहे हैं।
बिल्कुल, और हाँ, दुनिया अक्सर आसान जवाबों से कहीं ज़्यादा पेचीदा और दिलचस्प होती है। उन आसान मिथकों के बजाय जटिल सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, भले ही वो थोड़ी असुविधाजनक हो।
मेरे लिए तो सबसे कमाल की बात ये जानना थी कि अटलांटिक तट, जिन्हें हम यूरोप का किनारा समझते थे, वो असल में संस्कृति के लेन देन का एक बड़ा केंद्र थे। वो हाईवे वाली बात।
हाँ, वो वाकई नजरिया बदल देती है।
और ये कि सेल्ट्स जैसा एक छोटा सा शब्द अपने पीछे इतनी बड़ी, विविध और जटिल दुनिया छुपाए हुए था, ये वाकई आंखें खोलने वाला था।
और मेरे लिए कनलेफ का तरीका बहुत प्रभावशाली है, कैसे उन्होंने अलग अलग तरह के सबूतों, पुरातत्व, भाषा, इतिहास को एक साथ लाकर बड़ी सावधानी से उनका विश्लेषण किया और सदियों से चले आ रहे एक बड़े मिथक को चुनौती दी।
हाँ, वो मेथड कमाल का है।
ये दिखाता है कि अगर हम ईमानदारी से सबूतों के पीछे चलें तो अतीत की एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा मानवीय तस्वीर उभर सकती है, भले ही वो हमारी पसंदीदा, आरामदायक कहानी से मेल न खाती हो, बौद्धिक ईमानदारी जिसे कहते हैं।
तो एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस तरह कनलिफ ने सेल्ट की अवधारणा की परतें खोली, क्या हम अपने आसपास के इतिहास या वर्तमान के किसी और समूह या पहचान को भी इसी तरह बिना किसी पूर्वाग्रह के सबूतों की रोशनी में देख सकते हैं?
अच्छा सवाल है। अगर हम ऐसा करें तो शायद हमें अपने और दूसरों के बारे में कुछ नई और चौंकाने वाली बातें पता चलें, शायद कुछ मिथक टूटे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।